धवला पुस्तक दसवी लेक्चर नंबर 8। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयरियाणम्। नमो वच्छायाणम्। नमो लोए सौवसाहूणम्। कम्मठजनिय वेयण ओहि समुत्तिन्नये जिनेणमिं वेयण महाहियारम् विविह हि आरम परुवेमो। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इस षटखंडागम का यह चतुर्थ खंड शुरू हुआ है अपना, और उसमें वेदना अनुयोग द्वारा है। दसवीं पुस्तक में पृष्ठ संख्या 54 पर हम आ गए। 54। यहाँ कह रहे हैं, वैसे ये योगस्थान वगैरह की प्ररूपणा आने वाली है इसी पुस्तक में, परंतु अभी हम यहाँ चलो पढ़ेंगे। ये किसकी बात चल रही है? देखो, हमने देखा था ये गुणित कर्मांशिक की बात हो रही है। अब ऐसा जीव कि जिसने बादर पृथ्वी कायकों में कर्म स्थिति माइनस साधिक जो 2000 सागर जिसको हम कहेंगे त्रस स्थिति, उतनी माइनस करो और वो अंतर्मूर्त भी उसमें से माइनस करो। कौन वाला वो आबाधा जो एक इंद्रियों में बांधी थी वो, तो इतने काल तक तो बादर पृथ्वी कायकों में घूमा, पर्याप्त अपर्याप्त उसके सारे जो कंडीशंस है, 6 कंडीशंस, वो सब उसने वहाँ जिसको कहें भवावास, अद्धावास, आयुवास, अपकर्षण उत्कर्षण आवास, जिसको प्रदेश विन्यास भी कहते हैं, योगावास और संक्लेशावास, ये 6 आवास होते हैं, वो करते हुए वो त्रसों में आ गया। त्रसों में भी देखो, ये पूरे जो कर्म स्थिति प्रमाण काल है तो वो रुजुगति से ही उत्पन्न होगा, यानी वो एक इंद्रिय में घूमो या त्रस में घूमो, वो हमेशा ही रुजुगति से उत्पन्न होना है। क्यों? रुजुगति वाले का, जो मोड़ वाले का योग कम होता है, और भव का यानी शरीर ग्रहण करने के समय में योग ज्यादा होता है, इसलिए वो पहला उपपाद योग भी ज्यादा करना है, इसलिए वहां लेना। ये सारी कंडीशन हमने बहुत बार देखी वो यहाँ पर। अब त्रस के अंतिम की ओर आ गया है, तो वहां पर उसने अंत में नरक में उत्पन्न हुआ था, यानी बहुत बार नारकी में भी उत्पन्न हुआ है, ऐसा जीव लेना है इसमें, क्योंकि साधिक 2000 सागर में बहुत नरक के भोग किए, 7वें नरक में भी बहुत बार गया है इस तरह से। अब वो उसके जो कंडीशंस होते लगातार दो ही बार जाता है, वो सब इसमें लागू हो जाएगी। तो अभी वो नारकी के भव में आया हुआ जीव है, तो वहां उस उत्पन्न हुआ है, तो उसमें उत्पन्न इसीलिए कराया नारक में, वहां संकलेश ज्यादा है तो स्थिति उत्कृष्ट बन देगी एक बात, और उसके कारण वो उत्कर्षण के साथ वो सारा उल्टा प्रदेश विन्यास वगैरह सभी बातें घटित हो जाएगी। अब यहाँ कल पूछा गया था उत्कर्षण क्या होता है, तो उत्कर्षण ने विशिष्ट निषेक से उसके समान, उत्कर्षण के लिए एक कंडीशन क्या होती है, नया बंध होना चाहिए, और उत्कर्षण किसका होता है, जो पूर्व में बंधे हुए सत्ता में पड़े हुए निषेकों का। कंडीशन क्या, अपना बंध के समय से जाकर आवली काल बीत जाए उसके बाद ही उसका उत्कर्षण होगा, या जो कुछ चेंजेस होने हैं, उत्कर्षण संक्रमण वगैरह, अपनी बात उत्कर्षण की चल रही है। तो वो हमने देखा था कि जघन्य निक्षेप, उत्कृष्ट निक्षेप कहाँ क्या होता है, आबादा भी जघन्य से उत्कृष्ट कितनी होती है, ये हमने सभी बातें देखी है। अब यहाँ हम पेज नंबर 54 पर आए। अब यहाँ कहते हैं नया सूत्र 22 नंबर का, वहां पढ़ेंगे। तेनेव पढ़म समय आहारेण पढ़म समय तपभवत्थेन उक्कसेन जोगेन आहारिदो। प्रथम समय में आहारक, प्रथम समय में आहारक का अर्थ होते रुजुगति से आया है, और प्रथम समय में तद्भवस्थ होकर उसका भव का भी वो पहला समय है और शरीर धारण करने का भी पहला समय है, इसी का अर्थ रुजुगति से आया है। उसने उत्कृष्ट योग के द्वारा कर्म पुद्गल को ग्रहण किया। संगी पंचेंद्रियों के योग्य जो उपपाद स्थान होंगे उसमें भी जघन्य से उत्कृष्ट तक अनेक भेद होते हैं, उसमें से जो उसने उस समय उत्कृष्ट योग से यानी उपपाद योग में से उत्कृष्ट योग था, एक उत्कृष्ट उपपाद होगा, परंतु उसमें भी वेरिएशन होगी कंपेरेटिवली। हाँ, रुजुगति से जाने वाले का उपपाद ज्यादा होता है ये योग। अब उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रथम समय तद्भवस्थ पद के पद यानी जो ऐसा वाक्य बताए शब्द बताए उसके निर्देश का फल यानी उसके कथन क्यों किया ऐसा ये बताने की क्या जरूरत थी, तो द्वितीय व तृतीय समय तद्भवस्थ का प्रतिषेध करना है। तद्भवस्थ होना यानी शरीर ग्रहण करना, उसी को तद्भवस्थ कहा, क्योंकि जो एक मोड़ से जाता है वो दूसरे समय में तद्भवस्थ होता है, जो दो मोड़ से जाता है वो तीसरे समय में तद्भवस्थ होता है। तो कोई नारकी चौथे समय में तद्भवस्थ होगा कि नहीं होगा, वो तो सूक्ष्म एकेंद्रियों में ही तीन मोड़ ले सकते हैं। अब जघन्य उपपाद योग आदि का प्रतिषेध करने के लिए उत्कृष्ट योग पद का निर्देश किया। वहां देखें उत्कृष्ट योग के द्वारा ये कौन सा योग है, पहले समय में उपपाद योग, उसमें से उत्कृष्ट लेना। कर्ता कारक में यह तृतीया विभक्ति है, ऊपर लिखा ना उत्कस्येन जोगेन आहारिदो। उसने पुद्गल स्कंद को ग्रहण किया, ऐसा यहां संबंध करना चाहिए। ऊपर क्या लिखा जोगेन आहारिदो, उसने ग्रहण किया ऐसा लिया ना, उसने ग्रहण किया, जोग ने ग्रहण किया ने जोग के द्वारा उसको ग्रहण किया। यहाँ सूत्र में इव शब्द उपमार्थक है, उपमा के अर्थ में है। इसकी आवाज आ रही है। हाँ, आशय यह है कि जिस प्रकार कर्म स्थिति के भीतर सर्वत्र यानी हर बार यह जीव प्रथम समय में आहारक होता है और प्रथम समय में तद्भवस्थ होता है, आहार का होना ही वो तद्भवस्थ होना है वहाँ उसका। हाँ, आपका क्या प्रश्न है? हम जो संगी पंचेंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय में जाएगा विग्रह गति से, तो क्या उसका भी बंध असंगी जैसे होगा? बिल्कुल नहीं। असंगी से जो संगी में आता है उसकी बात, भले वो एकेंद्रिय से आया हो या असंगी पंचेंद्रिय से आया हो, विग्रह गति में उसका बंध जो है वो असंगी के समान होता है, यानी जो हजार सागर के प्रोपोर्शन। हाँ, संगी में आया है पर वो पहला समय केवल वो वहाँ उस वहाँ ले लेना, यानी विग्रह गति में लेना। हाँ, संगी में से संगी में जाए तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर, विग्रह गति में भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर। हाँ, संगी का विग्रह गति में भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर, और जो एकेंद्रीय से असंगी पंचेंद्रीय तक के जीव जो संगी पंचेंद्रीय में जन्म लेंगे, तो जब तक वो मोड़ में है यानी कारमान का योग चल रहा है, तब असंगी की जैसा उसका बंध है, यानी भले एकेंद्रीय से भी क्यों ना आया हो, वो तो उसको हजार सागर के अनुपात में, अनुपात क्यों कहा, वो मिथ्या तो बांध रहा है कि ज्ञानावरण के दर्शनावरण उस प्रपोर्शन में होगा उसका, ये नियम है। संगी में से एक इंद्रिय जाए तो एक इंद्रिय जैसा बंद होगा, संगी जैसा नहीं होगा, विग्रह गति में भी एक इंद्रिय जैसा ही होगा, एक इंद्रिय जैसा होगा। हाँ, उसमें उल्टा नहीं होगा। अब यहाँ हम पढ़ रहे थे पांचवी लाइन है, आशय यह है कि जिस प्रकार कर्म स्थिति के भीतर, यहाँ कर्म स्थिति ने 30 कोड़ा कोड़ी सागर हमने ली है क्योंकि ज्ञानावरण की बात चल रही है, सर्वत्र यह जीव प्रथम समय में आहारक होता है, यानी वो रुजुगति से गया हुआ जीव है। और रुजुगति रुजुगति रुजुगति, ये तो अंगुल के असंख्यात भाग काल प्रमाण हो सकता है, ये तो बहुत छोटा काल है, 30 कोड़ा कोड़ी सागर उसके सामने कम है। और प्रथम समय में तद्भवस्थ होता है, क्योंकि इसके विग्रह गति नहीं होती। विग्रह गति नहीं होती है, वो मोड़ वाली नहीं होती, विग्रह मोड़ को भी कहते हैं, और बिना मोड़ वाले को अविग्रह भी कहते हैं या रुजुगति भी कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ नरक गति में भी जानना चाहिए, यानी वही बात यहाँ पर भी लागू होती है, अप्लाई होती है, ये कहना चाहते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि प्रथम समय में आहारक और प्रथम समय में तद्भवस्थ जीव ने, एक्चुअली दोनों का अर्थ वही होता है, शरीर धारण करना और आहारक होना, बात एक ही है। उत्कृष्ट योग के द्वारा ही आहरण किया, आहरण किया ने शरीर के परमाणु को ग्रहण किया, अर्थात कर्म पुद्गल को ग्रहण किया, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। और यहाँ तो शरीर के परमाणु तो ग्रहण किया, पर हमारी बात कर्म की चल रही है, क्षपित कर्मांशिक या गुणित कर्मांशिक जो है, कर्म कितने उसकी बात है। तो जैसे शरीर के परमाणु ग्रहण किए, योग उत्कृष्ट था, तो कर्म के परमाणु भी मैक्सिमम उसने ग्रहण किए उस समय, तो कर्म पुद्गल को ग्रहण किया। समझ में आती है यहाँ पर बात। अब यहाँ आगे का सूत्र हम देखते हैं, 23 नंबर का। उक्कस्याये वड्ढिये वड्ढिदो, पहला है वो उपपाद योग, भले वो विग्रह गति वाला हो या वहाँ मोड़ वाला हो या नहीं हो, पहला समय है वो उपपाद योग। फिर जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण होती है तब तक क्या होता है, एकांत से वृद्धि, प्रति समय असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा, अंत एकांत वृद्धि के अंतिम समय तक प्रति समय असंख्यात गुणा, वो योग की भी वृद्धि होती है, उसके अविभाग प्रतिच्छेदों की असंख्यात गुणा वृद्धि होती है, तो उसको कहेंगे एकांत अनुवृद्धि के स्थान। परंतु जो असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा है, जो गुणाकार जो है, गुणक कितने गुणा, क्योंकि नहीं 4 गुणा है के 8 गुणा है के 32 गुणा है, वो गुणकार का प्रमाण भी यहाँ मैक्सिमम होना चाहिए। अलग अलग जीवों में कितने गुणा होता है वो भी डिफरेंस हो सकता है, इसलिए कहा उत्कृष्ट वृद्धि बताए, प्रति समय की जो वृद्धि है वो भी उत्कृष्ट है, ये कहना चाहते हैं। इसलिए नीचे लिखा ना, उत्कृष्ट वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हुआ, उत्पन्न होने के द्वितीय समय से लेकर एकांत अनुवृद्धि योग होता है, क्योंकि प्रत्येक समय में असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से, श्रेणी ने पंक्ति रूप से, असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा, इस पद्धति से योग की वृद्धि देखी जाती है, यानी योग इतना बढ़ता है। पहले समय में जो उपपाद था उससे असंख्यात गुणा हुआ, उससे असंख्यात गुणा हुआ, वहां गुणकार यानी जिस संख्या से गुणा करते हैं, गुणक जिसको हम कहेंगे, वो गुणकार जघन्य उत्कृष्ट और तद व्यतिरिक्त के भेद से तीन प्रकार का है, जिसको मध्यम भी कहेंगे, जो जघन्य नहीं जो उत्कृष्ट नहीं वो तद व्यतिरिक्त, उनमें से शेष दो वृद्धियों का परिहार करने के लिए, यानी यहाँ जघन्य वृद्धि से नहीं हो रहा है और मध्यम वृद्धि से भी नहीं हो रहा है, तो उत्कृष्ट वृद्धि से वृद्धिंगत हो रहा है, इसलिए उत्कृष्ट वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हुआ ऐसा कहा है, अन्यथा उत्कृष्ट द्रव्य का संचय नहीं बन सकता। हर बार कहा मैक्सिमम पॉसिबल उसको योग उत्कृष्ट रखना है, इसलिए एकांत वृद्धि में भी वृद्धि का जो गुणकार है वो भी मैक्सिमम उत्कृष्ट वाला रखा। अब 24 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे, अंतो मुहूर्तेण सौवलहुं सौवहि पज्जति ही पज्जत्यदो, अंतर मुहूर्त द्वारा अतिशीघ्र सभी पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, यानी वो पर्याप्ति की जो पूर्णता का काल है वो छोटा होना चाहिए, फिर भी वो अंतर्मुहूर्त तो होगा ही होगा, दो चार समय में कोई पूरा नहीं करेगा। पर्याप्तियों की पूर्णता का काल एक समय आदि नहीं है, इस बात का कथन करने के लिए सूत्र में अंतर्मुहूर्त पद का ग्रहण किया है, पर्याप्तियों के अजघन्य काल का निषेध करने के लिए, यानी वो जघन्य है अजघन्य नहीं है ये कहना चाहते, क्योंकि पर्याप्त होने पर योग और बढ़ जाएगा और वो दो परिणाम योग होने वाला है, अभी तो एकांत अनुवृद्धि है, वहां परिणाम योग में और वो असंख्यात गुणा बहुत ज्यादा बार हो सकता है। इसलिए अंतर्मूर्त कहा। पर्याप्तियों के अजगण्य काल का निषेध करने के लिए सर्व लघु पद कहा है, यानी वो अंतर्मूर्त का प्रमाण भी हीनाधिक होता है, तो मिनिमम काल में उसकी पर्याप्तियां हो गई। एक भी पर्याप्ति के अपूर्ण रहने पर पर्याप्तकों में परिणाम योग नहीं होता, इस बात के ज्ञापनार्थ सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ ऐसा कहा है। एक्चुअली वो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही परिणाम योग चालू हो जाता है, परंतु यहाँ विशिष्ट पद्धति से कह दिया उन्होंने। हाँ, अलग बताया है, परंतु होता तो शरीर पर्याप्ति के बाद ही होता है, वो बात आएगी कभी आगे। शंका, इस सूत्र का क्या प्रयोजन है? समाधान, अपर्याप्त योग से पर्याप्त योग असंख्यात गुणा है, यह बतलाना इस सूत्र का प्रयोजन है। क्योंकि पर्याप्त होने पर वो योग और असंख्यात गुना बढ़ जाता है। अब यहाँ कौन सा अपर्याप्त, जो ये निवृत्ति अपर्याप्त है, फिर भी पर्याप्त नाम कर्मक वाला ही है, परंतु वो पर्याप्ति पूर्ण होने पर और उसका योग ज्यादा बढ़ने वाला है। तथ्य भवठिदि 33 सागरों वो माणी, वहां भवस्थिति 33 सागरोपम प्रमाण है। इस सूत्र द्वारा अद्धावास की प्ररूपना की गई है, शेष कथन सुगम है। देखो दो बात आते हैं, एक भवावास और एक अद्धावास। भवावास में क्या देखते, पर्याप्तों के भव बहुत किए, और अद्धावास में वो एक एक भव लंबा आयु वाला था, ऐसे उसमें डिफरेंस है। अब नारकियों में तो बताया गया, बहुत बार नारकी में उत्पन्न हुआ तो पहले बताया था। अब नारकी में उत्पन्न होने पर एक ही भव है उसका, इसलिए यहाँ केवल अद्धावास की प्ररूपना है कि वो भव बड़े से बड़ा था। अद्धावास यानी वो अध्याय ने काल, यानी वो भव का काल, आयु उसकी कितनी आयु है उसको अद्धावास कहेंगे, यानी लंबी आयु। अब 26 नंबर 56 पृष्ठ पर आना। आहुम अनुपालन तो बहुसो बहुसो उक्कसानी जोगठानानी गच्छति, आयु का उपयोग करता हुआ यानी आयु बिताता हुआ, ये उसका अर्थ है। बहुत बहुत बार उत्कृष्ट योग स्थानों को प्राप्त होता है। अब ये योग स्थान यानी कौन से योग वाला है जीव, तो अधिक उत्कृष्ट की ओर है कि जगन्य की ओर है? क्योंकि संगी पंचेंद्रिय के योगी जो अपने योग स्थान होते हैं उसमें ये उत्कृष्ट की ओर अधिक बार रहा, ये उसका अर्थ है। तो इसके द्वारा योगावास की प्ररूपना की गई है, यानी उत्कृष्ट योग बहुत बार प्राप्त हुआ ये उसका अर्थ होता है, उसको योगावास कहेंगे। हमने एक इंद्रियों में सब बातें देखी थी, यहाँ फिर दोबारा रिपीट करके बता रहे हैं। बहुसो बहुसो बहुसंकिलेश परिणामो भवदी, बहुत बहुत बार बहुत संकलेश परिणाम वाला होता है, ये भी देखा था हमने। क्योंकि उसके कारण क्या होता है, स्थिति लंबी बनती है, यानी मैक्सिमम स्थिति बंधेगी, और वो प्रदेश विन्यास भी उस उत्कर्षण होने में भी उसके साथ बंद, नए बंद के साथ उत्कर्षण भी होता रहेगा। शंका, शेष तीन आवासों की प्ररूपना क्यों नहीं की? अश्विन भाई, शेष तीन आवास कौन से हैं? हाँ, भवे भवावास है, अपकर्षण उत्कर्षण आवास जिसको कहेंगे, और योगावास तो बता दिया। हाँ, भवावास एक है, उत्कर्षण अपकर्षण वाला वो आवास एक है। संकलेश आवास, वो तो संकलेश आवास यहाँ बता दिया, और उत्कृष्ट आयु होती है वो भी बता दिया। भवावास अलग से नहीं बताया, वो उत्कर्षण अपकर्षण आवास है वो भी नहीं बताया, क्योंकि वो संकलेश में सब इंक्लूड हो जाता है। क्यों नहीं बताया, यही प्रश्न है। देखो, एक होता है भवावास, यानी वो पर्याप्त भव बहुत की उसको भवावास कहते हैं। अद्धावास ने एक एक भव लंबा होता है उसको अद्धावास कहते हैं। हाँ, आयु आवास है वो जघन्य योग से आयु बनती है, उसको आयु का आवास कहते हैं। वो यहाँ नहीं लिखा, परंतु वो योग में इंक्लूड होता है। यानी यहाँ कौन से तीन नहीं बताए हैं, ऐसे है ना, शेष तीन आवासों की प्ररूपना क्यों नहीं की? तो शेष तीन आवास कौन से हो गए? एक भवावास हुआ, भवावास एक हुआ, अपकर्षण उत्कर्षण उसी को प्रदेश विन्यास कहेंगे, और आयु आवास, ये तीन क्यों नहीं किए, ये उनका प्रश्न है। तो कहते भवावास तो संभव नहीं, यहाँ पर नरक में उत्पन्न होने पर नारकी के अनेक भव होते हैं ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, इसलिए भवावास यहाँ नहीं कह सकते, क्योंकि एक ही भव में भव बहुत्व का अभाव है। नारकी तो एक ही भव होता है एट ए टाइम, उसके बाद वो मनुष्य तीर इंच करके फिर लौटेगा। आयु आवास की प्ररूपना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि उसका योगावास में अंतर्भाव हो जाता है। आयु आवास का अर्थ है जब जब आयु बनती है तब वो जघन्य योग से बनती है, यह आयु आवास का अर्थ होता है। और लंबी आयु को तो अद्धावास कहते हैं, वो तो बता चुके थे। तो कहते आयु आवास की प्ररूपना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि उसका योगावास में अंतर्भाव हो जाता है। शंका, यहाँ योग बहुत्व क्यों स्वीकार किया जाता है, यानी योग अधिक होना चाहिए ऐसा बार बार क्यों कह रहे हैं? तो उसका समाधान है, ज्ञानावरण के बहुत द्रव्य का संचय करने के लिए। हमारा प्रश्न ही ये था कि वो उत्कृष्ट जो प्रदेश किसके होता है, ज्ञानावरण के उत्कृष्ट प्रदेश किसके होते हैं, उसका उत्कृष्ट पद बताया था, तो वो कौन से जीव को होता है? तो जो अधिक से अधिक संचय करेगा उसके होता है। तो अधिक योग है तो समय प्रबद्ध बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसके लिए यहाँ योग बहुत्व स्वीकार किया जाता है। यदि कहा जाए कि आयु को उत्कृष्ट योग द्वारा बांधने वाले के ज्ञानावरण का उत्कृष्ट संचय होता ही है, सो भी बात नहीं है। देखो उत्कृष्ट योग तो बीच बीच में तो हीनाधिक तो योग होते ही रहते हैं। अगर उत्कृष्ट योग आयु के समय भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा? जब आयु बनती है तो 8 में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जब आयु नहीं बनती तो 7 में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी उसमें जो डिफरेंस है वो ज्यादा हो जाता है, ये कहना चाहते हैं। इसलिए आयु का जब बंद करना है तब जघन्य योग से ही बंद कराते हैं। तो कहते यदि कहा जाए, ने कोई पूछे, इसकी चर्चा तो पहले भी हो चुकी थी, तो यदि कहा जाए कि आयु को उत्कृष्ट योग द्वारा बांधने वाले के ज्ञानावरण का उत्कृष्ट संचय होता ही है, सो भी बात नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से तो ज्ञानावरण के बहुत द्रव्य का क्षय देखा जाता है। ये हमने वो 32 गुना समय प्रबद्ध करके वो संदृष्टि बनाकर देखा था। यानी ऐसा उसका अर्थ हम ऐसा भी समझते हैं ना, कोई एक विशिष्ट संख्या है वो 7 में डिवाइड होती है क्या 8 में डिवाइड होती है, 7×8=56, हम 5600 लेते हैं, 5600 रुपए हमारे पास, और 7 में डिवाइड करेंगे तो हरेक को कितने आएंगे अश्विन भाई? 7 में डिवाइड करेंगे तो 800 आएंगे, और 8 में डिवाइड करेंगे तो 700, तो हानि कितने की होगी उसकी? 100 की। तो उत्कृष्ट था तो 100 की हानि होती है। अब 56 ही देखो, 5600 छोड़ दो, 56 होता है, तो 56 होता है क्या? तो जब 7 में डिवाइड होगा तो 8-8 मिलेंगे, और 8 में डिवाइड होगा तो 7-7 मिलेंगे, वहाँ 100 की हानि होती है, यहाँ 1 की हानि है, इसलिए उसको जघन्य में रखना है, बस इतनी बात है। क्योंकि ऐसे भी तो कभी तो जघन्य की वो तो आएगा है ना, तो आयु के समय उसको जघन्य में लाना है। देखिए इस प्रकार से तो ज्ञानावरण के बहुत द्रव्य का क्षय देखा, ये क्षय का अर्थ समझ में है ना, क्षय ने वो खिरने वाला क्षय वो नहीं समझना, उसकी कितनी हानि हो सकती वो समझना। और इसलिए योगावास से आयु जघन्य योग द्वारा ही बनती है यह जाना जाता है, यानी योगावास में ही वो आयु का आवास इंक्लूडेड है। यहाँ कर्म के उत्कृष्ट जो संचय किस जीव के है उसकी बात चल रही अपनी। 57 पृष्ठ पर आते अभी, अतएव आयुरावास, आयुहु आवास तो आयुरावास हो गया, आवास शब्द है वो, योगावास में अंतर्भूत है, योग आवास वो योगावास, अतः उसकी पृथक प्ररूपना नहीं की है। तीन प्ररूपना में सभी 6 गर्भित है ये उनको कहना है। तथा यहाँ अपकर्षण उत्कर्षण आवास की भी प्ररूपणा नहीं की जाती है, क्योंकि उसका संक्लेशावास में अंतर्भाव हो जाता है। वो ब्रह्म वो अंतर्भाव भाव के ऊपर रफार चाहिए, त के ऊपर नहीं, अंतर्भाव हो जाता है। यह संग्रह नहीं की विषयभूत एक भव विषयक आवास की प्ररूपणा कही गई है। यानी एक भव में इस तरह से तीन में सब समा जाते हैं, अलग से नहीं कहे तो भी उसमें है, इंक्लूडेड है, संग्रह किया ना उसको, छह को तीन में बता दिया। अब ये नरक में क्या क्या किस तरह से वो छह आवास होते हैं उसने बताया। अब 28 नंबर का सूत्र, एवं संसरी दूण थोवा व शेषे जीवित अव्वये ति जोग यव मज्झ सुवरिम अंतो मुहूर्त धम इच्छिदो। इस प्रकार परिभ्रमण करके यानी नरक का इतना काल बिताकर जीवन के थोड़ा शेष रहने पर, अभी वो 33 सागर पूरे होने को आए हैं, अभी हुए नहीं, योग यव मध्य के ऊपर अंतर्मूर्त काल तक स्थित रहा। अब ये योग यव मध्य क्या है हमको मालूम नहीं है, उसको देखने जा रहे हैं हम। योग यव मध्य ने जो मेरी भाषा में कहेंगे तो द्विंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय के जघन्य से लेकर उत्कृष्ट योग स्थानों को एक पंक्ति में हम लिखेंगे, नीचे से लेकर ऊपर तक, नीचे जघन्य ऊपर उत्कृष्ट, एक 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 अलग अलग योग स्थान वहां कहेंगे। वो असंख्यात होते हैं ऐसे योग स्थान, योग स्थान है उसके वेरिएशंस। तो कुछ योग कंटिन्यूस कितने हैं, जो परिणाम योग क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, उतना का उतना भी रह सकता है। तो उतना का उतना रहने वाले योग स्थान कहाँ हो गए, जघन्य की ओर भी नहीं है, उत्कृष्ट की ओर भी नहीं है। कितने समय तक ज्यादा से ज्यादा रहेंगे, तो कहते मैक्सिमम 8 समय तक कोई योग स्थान रह सकते हैं। तो 8 समय वाले योग स्थान जो रहते हैं वो सेंटर में कुछ पाए जाते हैं, योग स्थानों के सेंटर में। ये केवल यहाँ समयों की अपेक्षा योग स्थान कहा, योग यानी हमारे गेहूं या कोई ऐसा जो यव जैसी रचना होती है, यव जैसे नारियल इमेजिन करो ना, बीच में बड़ा है और नीचे ऊपर टेपरिंगे, नीचे थोड़ा टेपरिंगे ऊपर ज्यादा टेपरिंगे, अपने नारियल की उपमा, वहां योग कहा उसको। तो जो बीच वाला बड़ा पार्ट है, अभी ये योग स्थान हमने यहाँ लिख दिए सारे, एक बाजू योग स्थान लिखी, ये सारे अलग 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 योग स्थान है। अब कुछ योग स्थान है वो 8 समयों तक रहेंगे, कुछ योग स्थान है नीचे की और भी ऊपर की भी और, वो 7 समय तक रहेंगे, कोई 6 समय तक, कोई 5 समय तक, कोई 4 समय तक रहेंगे। 4 समय तक कंटिन्यूस वही का वही योग रह सकता है। अब उत्कृष्ट की ओर देखो, वहां भी कोई 7, कोई 6, कोई 5, कोई 4, कोई 3 और कोई 2 समय तक कंटिन्यू, एकदम मैक्सिमम पॉसिबल का उत्कृष्ट योग 2 ही समय तक रह सकता है लगातार, लगातार की बात है, फिर उसको नीचे आना ही पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं। यानी जो 8 वाली बीच में लिए और दोनों ओर टेपरिंग लिए, नीचे 7, 6, 5, 4 तक आना, 4 तक ही आना, जघन्य योग कंटिन्यूस 4 समय तक ही रह सकता है, और ऊपर की ओर भी उत्कृष्ट योग 2 समय तक रह सकता है। तो ये इसको कहेंगे यव मध्य रचना। तो जीव ऊपर की ओर, ऊपर के स्थानों में, क्योंकि उत्कृष्ट नीचे से ऊपर तक कंटिन्यूएशन में उत्कृष्ट की ओर बढ़ रहे, और योग मध्य काल की अपेक्षा बात कर रहे हैं, यानी उत्कृष्ट की ओर वो योगों में रहा, ये उसका अर्थ होता है। दूसरा एक शब्द आने वाला है जीव यव मध्य, वो आगे के सूत्र में आएगा। अब जीव मध्य यव मध्य में अपनी भाषा में यहीं पर समझाती हूँ। जघन्य से उत्कृष्ट तक हमने योगों के अलग अलग वेरिएशन एक लाइन में नीचे से ऊपर तक लिख दिए। अब यहाँ कौन से जीवों को वो मैक्सिमम, कितने जीवों को कौन से स्थान हो सकते हैं, तो देखो बीच वाले जो कोई है वो एवरेज ऐसे कुछ योग स्थान है, वो अनेक जीवों में हो सकते हैं। जघन्य की ओर कम जीवों को होगा और उत्कृष्ट की ओर कम जीवों को होगा। तो बीच में जहाँ ज्यादा जीव पाए जाते हैं, मान लेते हैं 128 जीवों को ये इतने स्थान हो सकते हैं, फिर वो थोड़े घटते 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 28 के निम्न आधे हो जाएंगे, 64 जीवों को, 32 को, 16 को, यानी ये इसी रचना करना। और ऊपर भी टेपरिंग, ऐसे उल्टा दिखाना। यहाँ जीवों की अपेक्षा से बात, जहाँ मैक्सिमम जीवों को ये योग स्थान हो सकते हैं और दोनों की ओर थोड़े थोड़े कम होते हैं। अब यहाँ क्या है, अब दूसरी बात समझो, जो योग यवमध्य कहो या काल यवमध्य जिसको कहेंगे, उसमें जो सेंटर का ये आठ समय वाला है, उससे सात समय वाले योग स्थान असंख्यात गुणे होते हैं दोनों ओर के, उससे छह समय वाले उससे असंख्यात गुणे, उससे पांच समय वाले उससे असंख्यात गुणे, उससे तीन समय वाले, इस तरह से असंख्यात गुणे का डिफरेंस है। और जीव योग मध्य में जो कुछ ऐसे बीच वाले स्थान है योग स्थान में, जहाँ मैक्सिमम जीव है, परंतु दूसरे उसके नीचे की जो है थोड़े कम है, थोड़े कम है, थोड़े कम है, वहाँ थोड़े कम का डिफरेंस है। और फिर थोड़े कम होते होते आधे हुए, फिर उससे आधे हुए, फिर उससे आधे हो गए, जिसका ये वहाँ असंख्यात गुणा हो जाते, गुणात हो जाता है, और ये थोड़े थोड़े कम होते दोनों ओर। तो कहीं पर कहीं शब्द जीव यव मध्य शब्द आने वाला है, और कहीं कहीं योग यव मध्य आने वाला है। तो जीव यव मध्य कहेंगे तो भी ऊपर जाने, उत्कृष्ट की ओर ही जा रहे हैं। अभी अभी ये जो है ना, जीवों की संख्या हमने बीच में 128 मान ली, ऊपर 64 हुई, तो जहां 128 से 64 तक जो कोई थोड़ी थोड़ी कम होते होते गई, उसको गुणहानि कहेंगे, इसको जीव गुणहानि भी कहेंगे। जीव योग अध्य के ऊपर अंतिम गुणहानि में रहा जीव, ऐसा कहेंगे, यानी वो लास्ट। तो ये उसका अर्थ होने वाला है, अभी आने वाले है शब्द। अभी हम फिर से दोबारा पढ़ते इसको। हाँ देखो, शंका सूत्र में फिर पढ़ती हूँ। इस प्रकार परिभ्रमण करके जीवन के थोड़ा शेष रहने पर योग यव मध्य के ऊपर अंतर्मूर्त काल तक स्थित रहा, यानी अंतर्मूर्त तक वो तो ऊपर की ओर के उसके उत्कृष्ट योग रहे। यहाँ तक बात ख्याल में, सर्वोत्कृष्ट योग रहा ऐसा नहीं कहा, योग मध्य के ऊपर के जो योग स्थान है उसमें अधिक रहा वो अंतर्मूर्त तक। यहाँ शंका, अभी शंका करके शंका है, द्विन्द्रिय पर्याप्त के सबसे जघन्य योग स्थान से लेकर अवस्थित प्रक्षेप उत्तर क्रम से उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान तक प्राप्त हुआ जितना भी योग है। अभी इसका अर्थ समझते हैं। हमने एक बीच में लाइन बताई थी, ये सारे परिणाम योगों की बात है, यहाँ उपपाद योगों की बात नहीं लेना, क्योंकि उपपाद योग और एकांत अनुवृद्धि योग से ये जो परिणाम योग, इसमें बहुत डिफरेंस पड़ता है। हमें कंटिन्यूअस वृद्धि वाले चाहिए, यानी जो जघन्य योग है उससे थोड़ा अधिक थोड़ा अधिक थोड़ा अधिक, इन निरंतर है ये स्थान, कैसे निरंतर है। इसलिए द्विन्द्रिय से लेकर ले लिए, एक इंद्रियों की बात भी नहीं, क्योंकि एक इंद्रियों के बहुत कम हो गए, उसका डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। तो ये विशिष्ट वृद्धि के द्वारा होता है, यानी एक योग स्थान से दूसरा योग स्थान, उसे तीसरा, उसे चौथा, इससे कितने गुणा या कितना अधिक है, उससे ये अधिक है, उससे अधिक है, उससे अधिक है, ये निरंतर वृद्धि के द्वारा वो प्राप्त होते हैं। यहाँ क्या लिखा है, शंका कर की शंका, द्विन्द्रिय पर्याप्त के सबसे जघन्य योग स्थान से लेकर अवस्थित प्रक्षेप, अवस्थित प्रक्षेप में उतना का उतना उसमें ऐड करना, पहले योग स्थान से दूसरे योग स्थान में कितना योग अधिक है, तीसरे में कितना योग अधिक है, उसको अवस्थित यानी फिक्स, प्रक्षेप यानी उसमें एडिशन, ये हम जिसको चय कहते हैं ना पहले में, इस तरह से अवस्थित यानी वो फिक्स्ड, हाँ फिक्स्ड उसमें एडिशन, अवस्थित प्रक्षेप उत्तर, उत्तर यानी ऊपर का, तो अवस्थित प्रक्षेप उत्तर क्रम से, यानी थोड़ा अधिक थोड़ा अधिक थोड़ा अधिक, उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान तक प्राप्त हुआ जितना भी योग है, जो कि पहले दुगुण वृद्धि स्थान से दुगुण चतुर्गुण आदि के क्रम से उत्तरोत्तर गुण वृद्धि रूप स्थानों को प्राप्त है। अब यहाँ क्या कहना चाहते हैं, जो हमने एक लाइन जो बताई थी, ये द्विन्द्रिय का जघन्य योग, थोड़ा अधिक थोड़ा अधिक थोड़ा अधिक, कहीं पर जाकर योग भी डबल होगा कि नहीं होगा, अविभाग प्रतिच्छेद दो गुना हो गए, फिर उससे भी दो गुना हो गए, उससे दो गुना हो गए, दो गुना हो गए, यानी द्विन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय के उत्कृष्ट तक दो गुना दो गुना दो गुना होते होते वो कितना हो जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पर, जो पहले दुगुण वृद्धि स्थान से दुगुण चतुर्गुण आदि के क्रम से देखो, क्योंकि मान लेते ना यहाँ जो कुछ स्थान एक स्थान क्ष, तो फिर दो क्ष हुआ, ये चार क्ष हुआ, जो चार क्ष है वो पहले की दो गुना का भी दो गुना हुआ, चतुर्गुण हुआ, इस तरह से आठ गुना हुआ कि 32 गुना हम ऐसे कहेंगे, क्योंकि वो असंख्यात गुना हो जाता है ना, एक एक जीव में भी असंख्यात गुना असंख्यात गुना के स्थान है। यहाँ तो योग स्थानों की बात चली, योग दो गुना होना, तीन चार गुना होगा, आठ गुना होगा, असंख्यात गुना तक, तो ऐसे सारे स्थान है। अभी प्रश्न चल रहा है आदि के क्रम से उत्तरोत्तर गुण वृद्धि रूप स्थानों को प्राप्त है, और जो हाथी के शुंडा दंड के आकार का है वह योग यवाकार कैसे हो सकता है? ये शुंडा दंड क्या होता है? सुंड, तो ऐसी हो जाएगी सुंड, यानी थोड़ा अधिक थोड़ा अधिक थोड़ा अधिक, और फिर नीचे से ऊपर ऐसा उल्टा बढ़ते हुआ होगा, और आप कहेंगे बीच में ज्यादा है और ऊपर कम है, तो ये यवाकार कैसे होगा, ये उनका प्रश्न है। आप थोड़ा अधिक थोड़ा अधिक थोड़ा अधिक बताओ, देखिए हाथी के सुंड जैसा दिखेगा। तो कहते यह योग यवाकार कैसे हो सकता है, समझ में है ना उनका प्रश्न। उन्होंने क्या समझा, यव ही बीच में, यानी योग स्थान यानी अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा होता है और ऊपर कम होता है, ऐसा नहीं है। जघन्य से उत्कृष्ट तक तो योग के अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते 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 ऐसे जो योग स्थान है उसी की चर्चा है यहाँ पर। योग स्थान का अर्थ होता है वो टोटल मिलकर उस जीव का योग कितना है, उस स्थानों की चर्चा आएगी अभी। यह योग यवाकार कैसे हो सकता है? जब वह यवाकार नहीं है तब उसका मध्य भी संभव नहीं है, क्योंकि हमने बीच में ज्यादा है और दोनों ओर कम होता है। आप नारियल को इमेजिन करो, बीच में बड़ा है मोटा है और नीचे ऊपर छोटा हो जाता है, क्योंकि जो वस्तु असत है उसका मध्य मानने में विरोध आता है। अरे यवाकार हो ही नहीं सकता, तो ये तो हो ही नहीं, क्योंकि नीचे से ऊपर तक बिल्कुल ऐसा, क्योंकि उसने क्या देखा, केवल योग कितना बढ़ता है बस इतना ही देखा। यहाँ योग कितना बढ़ता है उसकी चर्चा नहीं, कौन से योग स्थानों में आठ समय तक रह सकता है, कौन से योग स्थानों में सात समय तक रहता है, उन योग स्थानों की चर्चा है यहाँ। अब उसका समाधान, यहाँ उक्त शंका का उत्तर कहते वह इस प्रकार है। द्विन्द्रिय पर्याप्त के सबसे जघन्य परिणाम योग स्थान से लेकर संगी पंचेन्द्रिय पर्याप्त के उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान तक के सब योगों को ग्रहण करके एक पंक्ति में स्थापित करने पर, हमने देखा था ना एक लाइन ऐसी देखो कि जहाँ द्विन्द्रिय का जघन्य योग नीचे लिखो, जो कोई पॉसिबल परिणाम योग स्थान है वो ऐसे एक लाइन में कंटिन्यूस वृद्धि 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 ऐसे जघन्य से उत्कृष्ट तक एक सिंगल लाइन में लिख दो। स्थापित करने पर उन सब योग स्थानों का आयाम, योग स्थानों का आयाम किसको कहेंगे, ये जघन्य से उत्कृष्ट तक जितने योग स्थान है, नंबर ऑफ योग स्थान, उसको कहेंगे योग स्थानों का आयाम। द्विन्द्रिय पर्याप्त के जघन्य योग से लेकर संगी पंचेन्द्रिय पर्याप्त के उत्कृष्ट योग तक अलग अलग कितने योग स्थान हो सकते हैं, उन टोटल संख्या को कहेंगे योग स्थानों का आयाम। वो कितना है तो असंख्यात है, वो कितना असंख्यात है तो कहते जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण प्राप्त होता है, यानी ऐसे अलग अलग योगों के वेरिएशंस कितने हैं तो श्रेणी के असंख्यातवे, श्रेणी यानी जगत श्रेणी, ये समझ में आई बात। उनमें से सबसे जघन्य परिणाम योग स्थान से लेकर आगे के जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग मात्र योग स्थान चार समय प्रायोग्य है। ऐसा कोई एक ही स्थान चार समय के लिए होता है ऐसा नहीं है, जघन्य से लेकर आगे असंख्यात योग स्थान ऐसे है, उसको भी जगत श्रेणी का असंख्यात भाग ही कहा, पर असंख्यात भाग के वैल्यू अलग अलग हो सकती है। सारे योग स्थानों की बात, अभी ये चार समय वाले कितने योग स्थान है, तो जघन्य से लेकर पहले असंख्यात योग स्थान चार समय वाले, पांच समय वाले वो भी जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण, अन्य योग स्थान पांच समय वाले है, जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण कुछ है वो अधिक समय वाले कम वाले हो गए। समझ में आती है बात, यहाँ तो जो अधिक समय तक है उनकी संख्या कम होगी, वो योग स्थान कम हो गए, और जहाँ कम समय तक रहते ऐसे योग ज्यादा होंगे, क्योंकि एक एक समय वाले जो कुछ है उसकी जो रेंज है, योगस्थानों की रेंज वो असंख्यात है, हर एक की वो असंख्यात का प्रमाण कम ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ क्या कहते हैं, देखो उनमें से पहले सेकंड लाइन पर आई मैं, सबसे जघन्य परिणाम योग स्थान से लेकर आगे के जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग मात्र योग स्थान चार समय प्रायोग्य है। चार समय प्रायोग्य का अर्थ होता है अगर लगातार वो अधिक से अधिक कितने काल तक रह सकते, चार समय, वो उससे ज्यादा नहीं रह सकते, उससे कम रह सकते, हो सकता है एक समय के भी रहे और चेंज हो जाए, उससे कोई रुकावट नहीं, पर मैक्सिमम कितना रह सकते तो चार समय। फिर इससे आगे के जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग मात्र योग स्थान पांच समय प्रायोग्य है, परंतु वो असंख्यात का प्रमाण थोड़ा कम होगा। इस प्रकार परिपाटी क्रम से यानी आगे आगे जाकर आगे के पृथक पृथक छह सात व आठ समय प्रायोग्य योग स्थान, यानी कोई छह समय तक होने वाले वो भी जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग, सात समय वाले वो भी, आठ समय वाले वो भी, पर जो आठ समय तक लगातार है ऐसे स्थानों की संख्या कम होगी, और दोनों ओर सात समय वाले छह समय वाले असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा होगा। हाँ, जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग मात्र है। फिर इससे आगे यथाक्रम से सात छ पांच चार तीन व दो समय प्रायोग्य योगस्थान प्रत्येक जगत श्रेणी के असंख्यात पे भाग मात्र है। हमने क्या देखा, हमने जघन्य से शुरुआत की थी, चार समय वाले थे, फिर पांच समय वाले, फिर छह समय वाले, सात समय, आठ समय वाले हो गए। अभी ऊपर की ओर उत्कृष्ट की ओर बढ़ना है, तो आठ वाले, फिर सात वाले, छह वाले, पांच वाले, चार वाले, तीन वाले और दो वाले, सबसे उत्कृष्ट योग स्थान दो समय तक लगातार रह सकता है। यानी उत्कृष्ट की ओर से वो भी असंख्यात स्थान ऐसे कि जो लगातार दो समय तक रह सकते हैं, ये उसका अर्थ होता है। खाली एक योग स्थान को नहीं लेना वहां पर। यानी जैसे जघन्य योग स्थान चार समय है, तो जघन्य की ओर के असंख्यात जो योग स्थान है वो भी चार समय तक रह सकते हैं, क्योंकि सारे जो योग स्थान है उनको हमने इन 11 स्थानों में बांट दिए। कौन से? चार वाले, पांच वाले, छह वाले, सात वाले, आठ वाले, सात वाले, छह वाले, पांच वाले, चार वाले, तीन वाले, दो वाले, ये 11 हो गए। तो ये सभी असंख्यातों को 11 में बांट दिया, फिर भी हर एक का प्रमाण जगत श्रेणी का असंख्यात भाग ही कहेंगे, उसमें हीनाधिक समझने योग्य है। यहां तक बात ख्याल में आई? यहाँ नीचे का पैराग्राफ 58 पेज पर आठ समय प्रायोग्य योग स्थान थोड़े है, यानी जो लगातार आठ समय तक रह सकते हैं ऐसे योग स्थानों की संख्या कम होगी। दोनों ही पार्श्व भागों में स्थित, पार्श्व में उनके दोनों ही बगल में, हमने देखा ना बीच में ऐसे कोई योग स्थान है, असंख्यात योग स्थान ऐसे है जो कंटिन्यूस आठ समय तक रहेंगे, दोनों ओर सात समय वाले हैं, तो इसलिए कहते हैं दोनों ही पार्श्व भागों में स्थित सात समय प्रायोगिक योग स्थान उनसे भी असंख्यात गुणे हैं। यानी कम स्थान ऐसे जो लगातार आठ समय तक रहेंगे फिर भी वो असंख्यात है, उससे भी असंख्यात गुणे स्थान ऐसे है जो कंटिन्यूस सात समय तक रह सकते हैं, वो जघन्य की ओर भी और उत्कृष्ट की ओर भी। दोनों ही पार्श्व भागों में स्थित छह समय प्रायोगिक योग स्थान असंख्यात गुणे हैं, यानी जितने सात समय वाले हैं उससे भी असंख्यात गुणे योग स्थान छह समय तक रह सकते हैं, वो भी दोनों ओर है, उत्कृष्ट की ओर भी है, जघन्य की ओर भी है। दोनों ही पार्श्व भागों में स्थित पांच समय प्रायोगिक योग स्थान उनसे भी असंख्यात गुणे, जितने छह समय टिक सकते हैं उससे भी असंख्यात गुणे पांच समय लगातार रहने वाले स्थान हो गए। दोनों ही पार्श्व भागों में स्थित चार समय प्रायोगिक योग स्थान असंख्यात गुणे हैं। देखो चार तक तो दोनों ही ओर कहना, अब तीन वाले और दो वाले वो केवल उत्कृष्ट की ओर ही कहना, ऊपर की ओर ही कहना पड़ेगा, इसलिए चार तक आ गए ना। ऊपर ऊपर यानी उत्कृष्ट की ओर तीन समय प्रायोगिक योग स्थान असंख्यात गुणे हैं, और दो समय प्रायोगिक योगस्थान उनसे भी असंख्यात गुने हैं। यानी बहुत बड़ी रेंज है कि जो केवल दो ही समय तक रह सकते, वो उत्कृष्ट की ओर के असंख्यात ऐसे योग स्थान है कि जो दो समय तक टिक सकते हैं। ये इसका अर्थ समझ में? हाँ, आठ समय वाला बीच, पार्श्व ने दो साइड वाला, उसके बगल वाला पार्श्व कहते हैं ना, वो आता है ना समय समय सार में, ये पार्श्ववर्ती मुहूर्त में अपना पड़ोसी होकर देख। किसका पड़ोसी? अभी तो शरीर में अपना तो रखा है, अभी उसको पड़ोसी बना दे और अपने आत्मा में स्थित हो जा। उसको पार्श्वनाथ भगवान कहा है, अरे उधर उधर ही पर्याय के पीछे खड़ा है और उसको देखता नहीं है, ऐसे कहते। हमें तो बाहर की पार्श्वनाथ की महिमा आती है ना, अपने इस पार्श्वनाथ की महिमा नहीं आती। हाँ देखो देखो, तो ये तीन समय प्रायोगिक योगस्थान असंख्यात गुणे हैं, दो समय प्रायोगिक योगस्थान असंख्यात गुणे हैं, गुणकार सर्वत्र पल्लोपम का असंख्यात भाव है। देखो क्या कहना चाहते हैं, एक एक स्थान में कितने कितने योगस्थान है, तो जगत श्रेणी के असंख्यात भाव कहीं पर भी जाओ, पर एक जगत श्रेणी के असंख्यात भाग से, यानी आठ समय वाले जगत श्रेणी के असंख्यात भाग, उसको पल्ले के असंख्यात भाग से गुणा करो तो सात समय वाले आ जाएंगे, उसकी जो संख्या उसको पल्ले के असंख्यात भाग से गुणा करो तो छह वाले आ जाएंगे। मूल संख्या जगत श्रेणी के असंख्यात भाग है, उसको असंख्यात गुणा करो तो भी जगत श्रेणी का असंख्यात ही भाग आया, उसको असंख्यात गुणा करो तो भी जगत श्रेणी का असंख्यात ही भाग है। ये गुणकार का प्रमाण पल्ले का असंख्यात भाग। यहां तक बात ख्याल में आई? यहाँ 59 पेज पर आते हैं। यहाँ इन योग स्थानों का, वो स्थान बरोबर करना, रथा हो गया, योग स्थानों का विशेषण भूत काल, क्योंकि काल के द्वारा हम कहें ना आठ समय वाले स्थान, सात समय वाले, तो उसका यानी वो योग स्थानों को ही बताना है और काल के द्वारा उसको बता रहे। अपनी संख्या की अपेक्षा यवाकार हो जाता है, क्योंकि यानी वो काल की संख्या की अपेक्षा यवाकार है, परंतु योगस्थानों की संख्या तो बाजू में असंख्यात गुणा हो रही, उसकी बात नहीं है, काल की अपेक्षा उसको यवाकार बताया, क्योंकि वह मध्य में तो स्थूल है और दोनों ही पार्श्व भागों में यानी दोनों ही साइड में क्रम से हानि होती है, यानी जघन्य तो पहला नीचे से अगर देखेंगे तो चार समय वाले, फिर पांच, फिर छह, फिर सात, फिर आठ, फिर टेपरिंग सात, फिर छह, पांच, चार, तीन और दो समय वाले, ऐसे टोटल 11 हो गए अलग अलग वेरिएशंस। इस प्रकार इन चार आदि समयों से विशेषित, समयों के द्वारा बताए गए योग स्थान भी 11 प्रकार का है। ये समझ में ना, 11 प्रकार कौन से? पांच समय लगातार रहने वाले, इस तरह से। अन्यथा वह काल का विशेष नहीं बन सकता, यानी काल के द्वारा उसको विशेषण बना के बताए चार समय वाले, पांच समय वाले, इस तरह से, क्योंकि योग से पृथकभूत काल नहीं पाया जाता, यानी वो योग स्थान को ही बताना है। काल तो काल के द्वारा हमने उसको बताया है, तो योग स्थानों की बात। यहाँ योग को ही यव कहा है और उसका मध्य योग यव मध्य कहलाता है, इसको योग यव मध्य कहा। बीच वाले जो स्थान है जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण जो योग स्थान है, उन्हीं को योग यव मध्य स्थान कहेंगे, उनको, आठ समयों को नहीं, वो समय बताने वाले जो योग स्थान है उनको योग यव मध्य कहा, क्योंकि वो सेंटर वाले हैं। यव मध्य से आठ समय वाले योग स्थान लिए जाते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। उस यव मध्य के ऊपर वहां क्या लिखा है ब्रह्मा तुम्हारी पुस्तक में? नव योगों के नहीं चाहिए, वो सब योगों के यानी सर्व योग स्थानों के चाहिए, सर्व योग स्थानों के ऊपर लिखा है, नीचे से पांचवी लाइन, उवरी उवरी में जोगठानेसु यानी ऊपर, सव जोगठानानम असंख्य सुभागेशु, यानी नव योगों के निकाल दो, उसके बदले लिखो सर्व योग स्थानों के असंख्यात बहुभाग प्रमाण। यानी यव मध्य हमने देखा था ना, यव मध्य कहाँ आठ समय वाले देखे थे, उसके ऊपर जाना यानी वो उत्कृष्ट की ओर जाना, तो उसके ऊपर सर्व योग स्थानों के असंख्यात बहुभाग प्रमाण योग स्थानों में अंतर्मूर्त काल तक स्थित रहा। क्योंकि हमने देखा नीचे की ओर योग स्थान कम है, ऊपर ज्यादा है, क्योंकि ऊपर तो चार के बाद तीन वाले भी और दो वाले भी, वो भी उससे असंख्यात गुना असंख्यात गुना है, यानी नीचे के तो असंख्यात वे भाग हो गए, ऊपर तो ज्यादा हो गए, क्योंकि तीन और दो वाले भी असंख्यात गुना वाले उसमें इंक्लूडेड है, तो उनमें जो अधिक टाइम रहता है ऊपर के योग स्थानों में जो असंख्यात गुना है उसमें अधिक काल तक रहेगा। आपका ये प्रश्न है एकदम जघन्य वाला एकदम उत्कृष्ट है, द्विंद्रिय का जघन्य है तो पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ, द्विंद्रिय के योग्य जो उसका यथा योग्य हो सकता है उसमें जा सकता है। कहाँ तक? अभी नीचे का यवो मध्य के नीचे से क्या एकदम ऊपर जंप मारकर सर्वोत्कृष्ट होगा क्या? नहीं होगा, यथा योग्य तक जाना। कितना बढ़ सकता है परंतु उसमें तो कहते हैं ना वो तो उत्कृष्ट हुआ। उसमें भी देखो चार प्रकार की वृद्धि हानि भी होती, थोड़ा बढ़ गया तो कहते असंख्यातवा भाग बढ़ गया, या संख्यात्वा भाग बढ़ गया, या संख्यात गुणा हुआ, या असंख्यात गुणा हुआ, इतना उसमें वेरिएशन होगा। चार ही प्रकार की वृद्धि हानि हो सकती है। देखो उस यव मध्य के ऊपर अभी करेक्शन किया ना, सर्व योग स्थानों के असंख्यात बहुभाग प्रमाण योग स्थानों में अंतर्मूर्त काल तक स्थित रहा। ये समझ में आई? ऊपर के उत्कृष्ट की ओर के जो है उसमें बहुत बार अंतर्मूर्त तक उसमें रहा, वो अंतर्मूर्त में एक एक किसी योग स्थान में तो चार समय तीन समय दो समय इतना ही रह सकता है, पर अंतर्मूर्त क्योंकि योग स्थान बहुत है ऊपर तो उनमें ही उसका हीनाधिकता होती रही, क्योंकि वहां चार वृद्धि और चार हानियों की संभावना देखी जाती है, लिखा है ना यहाँ पर। तो फिर शंका पूछते, चार वृद्धि और चार हानियों का काल अंतर्मूर्त है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? यानी लगातार असंख्यात गुण वृद्धि हुई, असंख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, ऐसे लगातार क्या अंतर्मूर्त हो सकता है? तो कहते हाँ ऐसा हो सकता है। तो समाधान, असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण हानि का काल अंतर्मूर्त है, ये तो होता ही रहता है योगों में, असंख्यात गुना असंख्यात गुना वृद्धि और उसी हानि ऐसे अंतर्मूर्त तक तो होती रहती है। तथा हाँ, हर समय प्रत्येक समय में, एक समय से दूसरे समय में असंख्यात गुना वृद्धि हुई, तीसरे समय में उससे असंख्यात गुना, चौथे, इस तरह से अंतर्मूर्त काल तक हो सकता है वृद्धि भी और हानि भी। तथा शेष वृद्धियों और शेष हानियों का काल आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण, यानी रेगुलरली तो असंख्यात गुना का ही डिफरेंस पड़ता है, परंतु संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि ऐसे लगातार कितना होगा आवली का असंख्यात विभाग। इस बंध सूत्र से यह जाना जाता है कि चार वृद्धि और चार हानियों का काल अंतर्मूर्त है। फिर पूछते कि वहां अंतर्मूर्त काल तक किस लिए स्थित कराया? क्योंकि उत्कृष्ट की ओर के योग लिए ना। समाधान, चूंकि यवो मध्य से आगे के योग पिछले योग से बहुत पाए जाते हैं। हमने देखा था एक एक तो यहाँ तो योग भी ज्यादा है और स्थान भी ज्यादा है ऊपर, अतः वहां अंतर्मूर्त काल तक स्थित कराया है। किसी एक योग में अंतर्मूर्त काल तक नहीं रहता है, पिछले नीचे के और ये यवो मध्य के ऊपर के उसमें अंतर्मूर्त तक रखना है, क्योंकि किसी एक एक स्थान में भी जैसे यानी सर्वोत्कृष्ट है दो समय, उसके नीचे के अनेक स्थानों में तो असंख्यात स्थानों में दो समय रह सकते हैं, फिर कभी तीन समय वाले कभी चार समय वाले, इस तरह से उसी में उसका अंतर्मूर्त तक घूमना होगा। अब ये विशेषार्थ पढ़ते हैं, यहाँ बहुत सारी वो योग स्थानों की बात फिर दोबारा समझाइए। ये आपके सबके हाथ में ये है कर्मकांड, किसने किसने लाया है? सबने लाया? अच्छा अच्छा ठीक है, कर्मकांड की भी बात देखेंगे। हाँ लाया है ना, बहुत अच्छा, क्योंकि जो विशेषार्थ है ना वो अभी कर्मकांड के आधार से बताने वाले हैं। पहले हम विशेषार्थ पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारी शोभा बेन के पास ये है ना। देखो, प्रति समय मन वचन और काय के निमित्त से जो आत्म प्रदेश परिस्पंद होता है उसे योग कहते हैं, और इनके स्थानों को योग स्थान कहते हैं। अभी योग स्थान सब मिलकर किसको कहना वो बात अभी हम देखेंगे, अभी तो जो योगों के डिफरेंसेस होते हैं उसको योग स्थान कहेंगे। योग स्थान तीन प्रकार के होते हैं। उपपाद योग स्थान, ये कब होता है? पहला समय, भले वो विग्रह गति में हो या शरीर धारण करने वाला हो, एक मोड़ से जाता हो, दो या तीन या बिना मोड़ का जाता हो, पहले समय में जो योग होगा उसको उपपाद योग कहेंगे। फिर एकांत वृद्धि योग स्थान और परिणाम योग स्थान, तीन प्रकार के योग होते हैं। भव के प्रथम समय में स्थित जीवों के उपपाद योग स्थान होते हैं। अब वो उपपाद योग स्थान भी इंद्रियों की जो रेंज है, जघन्य से उत्कृष्ट इंद्रियों की है, चतुरिंद्रिय के, पंचेंद्रिय के, वो जुदे जुदे हो गए। इसके पश्चात शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने तक एकांत वृद्धि योग स्थान होते हैं। वो कर्मकांड की अपेक्षा यही बात बताई है, यहाँ सभी पर्याप्तियों को पूर्ण कराया है परंतु शरीर पर्याप्ति तक लेना है। अभी हमने क्या पढ़ा था सूत्र में, सभी पर्याप्ति पूर्ण होने तक, इसीलिए मैं कह रही हूँ। ये तो उन्होंने कर्मकांड के अनुसार पूरा विशेषार्थ लिखा है। यदि लब्धि अपर्याप्त जीव होता है, क्योंकि लब्धि अपर्याप्तों की एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती तो उनमें कहाँ तक होगा एकांत वृद्धि? आयु के अंतिम तीसरे भाग को छोड़कर, लास्ट वन थर्ड को छोड़ना, यानी आयु के टू थर्ड तक, दो तिहाई तक उपपाद योग के बाद अन्यत्र एकांत अनुवृद्धि योग स्थान होते। ये तो समझ में आती है ना बात, हमने दो चार बार पहले भी देखा था इसको। पहले समय में उपपाद, बाद में एकांत अनुवृद्धि, इसके बाद शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने के समय से लेकर, हाँ, यानी एक समय पूर्व तक उसको एकांत वृद्धि है, और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के समय से लेकर परिणाम वृद्धि, या लब्धि अपर्याप्त के अंतिम तीसरे भाग में परिणाम योग स्थान होते हैं। इसी को घोटमान भी कहते हैं, ये हीन होना, अधिक होना, उतना का उतना रहे, घोटमान या घोलमान ऐसे भी शब्द आते हैं। ये परिणाम योग स्थान द्विन्द्रिय पर्याप्त के जघन्य योग स्थानों से लेकर पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के उत्कृष्ट योग स्थानों तक क्रम से वृद्धि को लिए हुए होते हैं। सबसे जघन्य, फिर थोड़ा अधिक, थोड़ा अधिक, थोड़ा अधिक वाला वाला, वाला दूसरा तीसरा नंबर, कंटिन्यूअस वो वृद्धि के स्थान पाए जाते हैं। इसलिए द्विन्द्रिय से पंचेंद्रिय तक को रखा है। इनमें आठ समय वाले योग स्थान सबसे थोड़े होते हैं, हमने देखा था ना, अभी बताए ना, इनकी संख्या जगत श्रेणी के असंख्यात, वो असंख्यात का प्रमाण थोड़ा है और दोनों ओर वो असंख्यात गुना है, परंतु बीच वाले कम बार जो आठ समयों तक लगातार रहते हैं ऐसे योग स्थान कम है, यही कह रहे हैं। आठ समय वाले योग स्थान सबसे थोड़े होते हैं, हमने अभी यही देखा था, अभी उसी को रिपीट कर रहे हैं, फिर उसी को हम कर्मकांड पुस्तक में से भी देखेंगे। इनसे दोनों पार्श्व भागों में स्थित सात समय वाले योग स्थान असंख्यात गुणे होते हैं, यानी उनसे असंख्यात गुणे ऐसे योग स्थान है जो कंटिन्यूस सात समय तक लगातार रह सकते हैं। इनसे दोनों पार्श्व भागों में, यानी हम नीचे ऊपर कहेंगे, योग की अपेक्षा नीचे ऊपर, छह समय वाले योग स्थान असंख्यात गुणे होते हैं। इनसे दोनों पार्श्व भागों में स्थित पांच समय वाले योग स्थान असंख्यात गुणे होते हैं। इनसे दोनों पार्श्व भागों में स्थित चार समय वाले योग स्थान असंख्यात गुणे होते हैं। अब जघन्य की ओर वो चार समय वाले तक है, अभी ऊपर ही देखना, केवल तीन समय वाले, दो समय वाले उत्कृष्ट की ओर के ही होते हैं। इनसे तीन समय वाले योग स्थान असंख्यात गुणे होते हैं, यानी नंबर ऑफ योग स्थान भी वहां असंख्यात है। वो योग असंख्यात गुणा होता ये नहीं कह रहे, अलग अलग वेरिएशन असंख्यात गुणा है। और इनसे दो समय वाले योग स्थान असंख्यात गुणे हैं, यानी केवल एक ही योग स्थान नहीं है दो समय तक टिकने वाला, वो उत्कृष्ट की ओर के असंख्यात योग स्थान ऐसे है, वो लगातार दो समय तक टिक सकते हैं। ये सब योग स्थान 4, 5, 6, 7, 8 फिर 7, 6, 5, 4, 3 और 2 समय वाले होने से 11 भागों में विभक्त है। वो हमने पढ़ा था, उसी को दोहरा रहे। अतः समय की दृष्टि से इनकी यवाकार रचना होती है। 8 समय वाले को बीच में रखेंगे, फिर दोनों ओर 7 समय, ऊपर और नीचे, 6 नीचे और ऊपर। परंतु वो भले 8 समय वाले हैं, परंतु उनकी संख्या कम है, उन योग स्थानों की संख्या कम है, और दोनों ओर असंख्यात गुना बढ़ते हैं। समय कम हो रहा है और वो संख्या असंख्यात गुना होगी। वो भी असंख्यात है। सबकी संख्या कितनी है? एक एक की जगत श्रेणी के असंख्यात है भाग प्रमाण। पर जगत श्रेणी का असंख्यात भाग जो 8 समय वाला है, उसको पल्ले का असंख्यात भाग से गुणा करो तो 7 वाले हो गए। उसको और एक पल्ले के असंख्यात भाग से तो 6 वाले हो गए। निकालो, अभी कर्मकांड की पुस्तक निकालो, एक मैं चार्ट बताना चाहती हूँ आपको, क्योंकि उसमें वहां का डिस्क्रिप्शन तो बाद में पढ़ेंगे। हाँ, 257 लिखा है यहाँ पर, वो पुराना होगा शायद। ये यवाकार रचना जो है ना 244 पर है, 244 पर एक वो फिगर बताई है। अभी इसमें समझाना कठिन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभी इसमें अगर 8 वाला देखो आप, बाकी सब सेम रखा है, जहां लास्ट में एक रखा है ना। और 7 वालों में क्या लिखा है? बाकी वो का 8 संख्या तो आप इतना ही रखो, एक कम पल्ले के असंख्यात भाग का दूसरा भाग जो है, अभी वो कितना है क्या है छोड़ो, वो उससे असंख्यात गुना है, उससे असंख्यात गुना इस तरह से ऊपर बढ़ाया है, क्योंकि ऊपर ऊपर वो पक्की संख्या कम की है, क्योंकि वो भागाहार में संख्या है। जगत श्रेणी को पल्ले के असंख्यात भाग वो उसके भागहार में था, उसको गुणा करने पर उतने पल्ले का असंख्यात भाग गुणा किया तो आगे आगे की संख्या में एक एक पद कम होती हो गया। देखो देखो वो कैसे पढ़ना, मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत बड़ी फिगर से घबराने की बात नहीं है। वो समय प्रबंध वगैरह, वो बड़ा समय प्रबंध वो सब लिखा है, यानी ये ऐसी आड़ी एक लाइन है शुरुआत में, उसका अर्थ होता है जगत श्रेणी, और उसके नीचे ऐसा लिखा है वो जगत श्रेणी का असंख्यात भाग। अभी उसके बाजू में 31 लिखा है, ऊपर एक लिखा है, वो छोड़ दो, क्योंकि वो तो बड़ा समय प्रबंध वगैरह बताने के लिए। अब इतना ले लो, जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण स्थान थे। अब वो जगत श्रेणी के असंख्यात भाग में ही ये नीचे लिखना, ये पल्ले का असंख्यात भाग ये कितनी बार लिखा है वहां? 6 बार। अब उसके आगे आगे क्या होता है देखो, दोनों ओर 7 में क्या हुआ? तो उससे पल्ले के असंख्यात भाग से गुणा किया, तो ये श्रेणी के लाइन में प चला गया है ऊपर, ये पल्ले के असंख्यात भाग वो एक कम करके उससे गुणा किया है। अभी आगे क्यों 2 गुणा किए वो उससे छोड़ दो, यानी ये समझ में आती है ना, इसको गुणा किया यहाँ पर। अब उसके आगे के उसमें क्या, उससे और एक पल्ले के असंख्यात भाग से गुणा करेंगे तो ये एक निकल जाएगा, और एक पल्ले के असंख्यात भाग से गुणा करेंगे तो ये निकल जाएगा, और एक बार पल्ले के असंख्यात भाग से गुणा करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो लास्ट एकदम ऊपर देखो, एक ही पल्ले का असंख्या तो अभाग रखा और बाकी का आगे का गुणकार तो रहा वहां पर। यानी पूरी में संदृष्टि नहीं बताना चाहती, पल्ले के असंख्यात भी भाग गुणा दोनों ओर बढ़े हैं, बस इतनी बात है। और सबकी संख्या कितनी, जगत श्रेणी का असंख्यात अभाग, ये तो रखा ही है, ये ओरिजिनल वैल्यू तो रखी ही रखी है। पहले इसमें भागाकार में ज्यादा बढ़ा लिया और उसको गुणा करने से वो एक एक कट होता गया, ये बताना चाहते हैं। पल्ले का असंख्या तो अभाग है, अभी बताए ना, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हुआ था ना, अभी अभी देखा ना, 242 कर्म का। जघन्य योग स्थान से सर्वोत्कृष्ट योग स्थान, पल्ले के अर्धच्छेदों के असंख्यात भी भाग गुणा है, वो योगस्थान के अपने अविभाग प्रतिच्छेदों की बात है और यहाँ नंबर ऑफ योगस्थानों की बात है। यहाँ क्या है, पूर्व स्थान से उत्तर स्थान पल्ले के असंख्यात गुणा है, तथापि जघन्य योग स्थान ने नहीं, जघन्य योग स्थान में जो अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या है उससे सर्वोत्कृष्ट योग स्थान कितने गुणा है। अब योग स्थान किसको कहना है वो अभी हमने नहीं देखा, उसको भी देखने जा रहे हैं। पूरा एक योग स्थान किसको कहना और उसके अविभाग प्रतिच्छेदों को कैसे नापना, क्योंकि आत्मा के सभी प्रदेशों में समान योग नहीं होता। जैसे कर्मों में क्या देखते हैं हम, निषेक रचना, नीचे के निषेकों में परमाणु ज्यादा और ऊपर परमाणु कम। अभी एक योग स्थान में जीव के प्रदेश कितने हैं, लोक प्रमाण संख्या, उस वो तो फिक्स है ना, उसमें तो हिना दिक कुछ नहीं हो सकती। अब उन प्रदेशों में मिनिमम योग जिनमें है, जिन जिन प्रदेशों में मिनिमम योग है उनको एक लाइन में रखेंगे, उनको कहेंगे वर्गणा। उसमें थोड़ा कम योग जिन जिन प्रदेशों में उसको दूसरी लाइन में लिखेंगे, उसको कहेंगे वो दूसरी वर्गणा, तीसरी वर्गणा। ऐसे असंख्यात वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहेंगे। जैसे कर्मों में जाता है ना, वर्ग वर्गणा स्पर्धक गुणहानि नाना गुणहानि, वो सभी नाम यहाँ पर आने वाले हैं और वो सभी का मिलकर एक योग स्थान होता है। हाँ हाँ बोलो बोलो।
अभी आपने जो कहा वो मुझे कंफर्म करना है कि जो योग होता है हर हर प्रदेशों में अलग अलग होता है क्या?
हाँ,
इंटेंसिटी
इंटेंसिटी अविभाग अविभाग प्रतिच्छेद अविभाग प्रतिच्छेद। यानी देखो लोक प्रमाण जीव के प्रदेश कितने, लोक प्रमाण, तो सबसे जघन्य योग तो असंख्यात जगत प्रतर में तो मिनी एक समान योग है। देखो जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी लोक होता है, तो जगत प्रतर को असंख्यात गुणा करो तो इतने प्रदेशों में वो पहली वर्गणा कहेंगे, उसमें समान योग है, मेजॉरिटी तो उसी में आ गई ना। फिर दूसरे वर्गणा में कितने हो गए, एक अविभाग प्रतिच्छेद से ज्यादा हो गए, पर उनमें प्रदेश कितने हो गए, एक चय से कम हो गए। प्रति वर्गणा एक एक चय कम होता होता चले जाएंगे, ऐसे असंख्यात जो हो जाएगी वर्गणा तब जाके स्पर्धक कहेंगे। तो जहां पहले अविभाग प्रतिच्छेद कितना था पहली वर्गणा में, मिनिमम कितना है, अनंत नहीं होता योगों में, असंख्यात ही। हाँ, असंख्यात लोग कितना होता है। अभी देखो अभी आपको ये सब यूनिट है उसका, हमने ये आधा ही पढ़ा था, मुझे मालूम है। अभी कर्मकांड ही निकालो, क्योंकि योग स्थान क्या है समझे बिना आगे की गाड़ी नहीं समझेगी कुछ। हाँ, वो तो कहने की पद्धति ना, उसकी जो वर्गणा है उसका अवलंबन लेता है जीव और उसकी परिभाषा ऐसी कहने की पद्धति हो गई है। परंतु वहाँ शरीर नाम कर्म के उदय में जीव के जो, तो वो कंपन, वो द्रव्य योग और भाव योग, ऐसे दो भेद है उसके अंदर। देखो अभी निकालो, ये आपको निकालना है कर्म कांड 218 गाथा है। ये अभी हमने तीन प्रकार के योग बताए थे ना आपको, उपपाद है, एकांत वृद्धि है और परिणाम है। 222 से ये बात चली है, 222 पेज निकालना। देखो योगस्थान तीन प्रकार के मिले, पहली लाइन से उपपाद योगस्थान, एकांत वृद्धि योगस्थान और परिणाम योगस्थान। ये भले कितना ही विषय रिवीजन रिपीट हो रहा है परंतु अपना पक्का हो जाएगा। एक एक भेद के 14 जीव समासों की अपेक्षा, 14 जीव समास याद है कि भूल गए? सूक्ष्म एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीनद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी और संगी पंचमी, हाँ अपर्याप्त और पर्याप्त, ऐसे 14 भेद होते हैं। तो 14 भेद होते हैं, यानी उपपाद योग के भी 14 भेद हो गए, एकांत वृद्धि के भी और उसके भी। सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त का उपपाद योगस्थान, सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त का उपपाद योगस्थान, इसी प्रकार अभी एक एक में निकाल दिया हूँ, बादर एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीनद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, पर्याप्त पर्याप्त के, पहले अपर्याप्त को लेना बाद में पर्याप्त को लेना, क्योंकि अपर्याप्तों का कम होगा पर्याप्तों का ज्यादा होगा, यानी इतने भेद हो सकते 14। उपपाद योग जानना, उसमें भी जघन्य से उत्कृष्ट तक अलग अलग उसके वेरिएशन बताएंगे। एक उपपाद योग स्थान के 14 भेद हुए, इसी तरह एकांत वृद्धि और परिणाम योग स्थान के 14 भेद जानना, यानी किससे कौन से कितना गुना है वगैरह, वो सब बातें आती हैं। पुनश्च इन एक एक के 14 भेद सामान्य, जघन्य, उत्कृष्ट की अपेक्षा तीन प्रकार के हैं, यानी सामान्य ने उसमें जघन्य उत्कृष्ट भेद किए बिना इन जनरल कहेंगे तो सामान्य कहेंगे उसको, वहां सामान्य की अपेक्षा 14 भेद, सामान्य और जघन्य की अपेक्षा 28 भेद, सामान्य जघन्य और उत्कृष्ट की अपेक्षा 42 भेद होते हैं। ये तो समझना आसान है। आगे उपपाद योगस्थानों का स्वरूप कहते हैं। पर्याय धारण करने के पहले समय में स्थित जीव के उपपाद योगस्थान होता है। जो जीव विग्रह गति अर्थात वक्र गति द्वारा बीच में मुड़कर जाता है और नवीन पर्याय को प्राप्त होता है, उसके जघन्य उपपाद योग स्थान होता है। हमने देखा ना मोड़ से जाने वाले का। जो जीव रुजु गति अर्थात मोड़ बिना की सीधी गति से नवीन पर्याय को धारण करता है, उसके उत्कृष्ट उपपाद योग स्थान होता है। वे उपपाद योग स्थान 14 जीव समासों में जानना। अब यहाँ क्योंकि पर्याप्त अपर्याप्त के सभी अलग हो गए, पर्याप्त जीव भी शुरुआत में निवृत्ति अपर्याप्त कहलाता है, पर उसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, इसलिए अपर्याप्तों से वो निवृत्ति अपर्याप्तों का भी उपवाद अलग से बताया। 14 जीव समास में उसकी अलग बात की है, क्योंकि वो ज्यादा होता है। अब देखो पेज नंबर 223 पर आना। तो एकांत वृद्धि हो जाएगी वहां पर, पहले समय में उपवाद है। देखो पहले स्थित, देखो जो विग्रह गति अर्थात वक्र गति द्वारा बीच में मुड़कर जाता है और नवीन पर्याय को, उसके जघन्य उपपाद, वो एक मोड़ लो, दो मोड़ लो या तीन मोड़ लो, पहले समय में जघन्य, बाद में एकांत वृद्धि है। भले विग्रह गति में उसने तीन समय बिताए हैं, तो पहले समय में जघन्य हुआ, दूसरे और तीसरे समय में एकांत वृद्धि हुई। हाँ उसमें है, उसमें हर एक में जघन्य उत्कृष्ट के भेद होते हैं। एक तो सामान्य से कहेंगे उसका योग उपपाद योग, परंतु उसमें भी जघन्य उत्कृष्ट मध्यम भेद हो गए हर एक में। अब परिणाम योग स्थान जो अभी हमने पढ़ा था 220 की टीका, परिणाम योग स्थान शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के प्रथम समय से लेकर अपने आयुर्बल के अंतिम समय तक जानना, इन्हें पूरी लाइफ टाइम तक। लब्धि अपर्याप्त जीव की अपनी स्थिति श्वास के 18वें भाग प्रमाण उसके त्रिभाग करने पर अंतिम त्रिभाग के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक परिणाम योग स्थान जानना। यहाँ तक बात ख्याल में आई? ये हमने पढ़ा था अभी विशेषार्थ में, वही बात यहाँ है। अब नीचे 221 की टीका, अपनी अपनी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के समय से लेकर ऊपर अपने आयुर्बल के समयों में यानी मरण तक परिणाम योग स्थान उत्कृष्ट भी और जघन्य भी हो सकता है। वो परिणाम योगों की जो विशिष्ट जो हम कहें ना रेंज है उसमें, यानी वो परिणाम योग स्थान कभी एकांत वृद्धि या उपपाद जैसा नहीं होगा, वो तो परिणाम की रेंज ही अलग है, वो ऊपर ही असंख्यात गुना ही होती है, उसमें ही नाधिक होता है। लब्धि अपर्याप्त की स्थिति श्वास के 18वें भाग प्रमाण उसके अंतिम त्रिभाग के पहले समय से लेकर अंतिम समय तक स्थिति के सर्व भेदों में, स्थिति के सर्व भेद का अर्थ है लब्धि अपर्याप्तों की भी आयु हीनाधिक होती है ना, इसलिए स्थिति के सर्व भेद लिए है। सारे अंतर्मूर्त ही परंतु क्षुद्र भव से लेकर यथायोग्य अंतर्मूर्त तक उनमें परिणाम योग स्थान उत्कृष्ट भी और जघन्य भी हो सकते हैं। दोनों ही जीवों के वे सर्व परिणाम योग स्थान घोटमान योग जानना। देखो ये घोटमान शब्द है, ऐसा ही घोलमान भी शब्द आता है, हमने क्षपित घोलमान और गुणित घोलमान देखा था ना, तो घोटमान योग जानना, क्योंकि ये योग स्थान घटते भी है बढ़ते भी है और जैसे के वैसे भी रहते हैं। उसी योग स्थान में लगातार दो समय रहा तो कहेंगे अवस्थित रहे। अभी हमने देखा कोई 8 समय तक रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, फिर घटेंगे बढ़ेंगे कुछ भी होगा। अब एकांत वृद्धि योग स्थानों का यहाँ स्वरूप बताया है। यहाँ तो उसमें जो योग स्थान जो कहने में आता है तो जो टोटल कुछ जो कुछ उसके अविभाग प्रतिच्छेद है, पहले समय में उपपाद था उससे असंख्यात गुना एकांत वृद्धि का पहला समय, उससे असंख्यात गुना अविभाग प्रतिच्छेद वाला योग स्थान दूसरे समय में, फिर असंख्यात गुना असंख्यात गुना, ऐसे एकांत अनुवृद्धि में असंख्यात गुना वाले हो गए। यानी एक ही जीव में पहले समय से उसके अंतिम समय तक यानी शरीर पर्याप्ति के एक समय पूर्व तक वो असंख्यात गुना अलग अलग योग स्थान हो गए। अब ये योग स्थान किसको कहना उसकी बात अभी हम देखेंगे। देखो ये नीचे 223 की टीका है ना, योग स्थानों के अवयव कहते हैं। सर्व योग स्थान जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। हमने देखा टोटल 8 समय वाले 7 समय वाले सब कुछ मिलकर टोटल कितने हैं, तो जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण, उनमें एक एक स्थान प्रति प्रत्येक स्थान में क्या क्या पाया जाता है, कैसे गिनेंगे उसको, योग स्थान किसको कहेंगे, एक योग स्थान में क्या क्या बातें होती है, तो अविभाग प्रतिच्छेद, क्योंकि योग का जो उसकी जो शक्ति है उसका ये यूनिट है, कितना योग है तो कहेंगे वो अविभाग प्रतिच्छेदों में नापेंगे। एक एक प्रदेश में कितना अविभाग है, तो मिनिमम भी असंख्यात लोग किसके उतने अविभाग प्रतिच्छेद है। अब उसमें वो उपपाद वाले जघन्य हो गए, फिर वो अनंत असंख्यात गुणा वगैरह हो गए। कर्मों में कैसे अनंत गुणा वाला होता है वैसा यहाँ नहीं है, यहाँ असंख्यात तक ही उसकी रेंज है। तो अविभाग प्रतिच्छेद वर्ग किसको कहेंगे अभी यहाँ पर, नहीं उसको वर्ग ना कहेंगे, वर्ग किसको कहेंगे, एक प्रदेश को वर्ग कहेंगे, आत्मा के एक एक प्रदेश को एक एक वर्ग कहेंगे, क्योंकि उसमें अपना अपना योग है, यानी योग से युक्त सारे ही प्रदेश योग से युक्त है, योग बिना का एक ही प्रदेश एक भी प्रदेश नहीं है इसमें, वो 8 प्रदेश योग बिना के होते निरालो में, वो ऐसा कुछ नहीं है उसमें। हाँ सबको, क्योंकि एक एक प्रदेश की यहाँ बिल्कुल गिना गणतरी करके बताइए। तो अविभाग प्रतिच्छेद वर्ग यानी एक एक आत्म प्रदेश उसको वर्ग कहेंगे, क्योंकि उसमें अपना अपना योग है कुछ, तो यानी उसके अविभाग प्रतिच्छेद है। वर्गणा का अर्थ है जिनमें जिनमें समान अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं, ऐसे प्रदेशों को आत्मा के जिन जिन प्रदेशों में वो मिनिमम योग है उसको जघन्य वर्गणा कहेंगे। केवल वर्गणा कहना है तो क्या, जिनमें जिनमें अविभाग प्रतिच्छेद समान है, कर्मों में ऐसे ही देखते हैं ना हम, कर्मों में भी वर्ग वर्गना शब्द थे, अविभाग वहाँ अनुभाग को बताने वाले थे और यहाँ योग को बताने वाले हैं। वहाँ कर्म परमाणु थे, यहाँ जीव के प्रदेशों को लेना है तो उसको वर्गना कहेंगे। यानी जघन्य वर्गना किसको कहेंगे, जिसमें मिनिमम पॉसिबल योग है। ऐसे सब आत्मा के प्रदेश तो पूरे असंख्यात प्रदेश कहीं पर भी है, जिनमें जिनमें वो जघन्य योग होगा उन सबको हम एक लाइन में लिखेंगे। वहां कोई आत्मा के प्रदेशों में कुछ ऊपर नीचे नहीं करना है, तो उस सबका नाम क्या होगा, पहली वर्गना जघन्य वर्गना। अब दूसरी वर्गना में क्या होगा, एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा होगा। योगों में जो मिनिमम वृद्धि हो सकती है वो एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है, पर ऐसे प्रदेश कितने हो गए, पहले से कम हो गए, प्रदेशों की संख्या कम होगी, अविभाग प्रतिच्छेद एक एक बढ़ेगा, उसको कहेंगे दूसरी वर्गना। फिर तीसरी वर्गना में एक और अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा, प्रदेश उससे भी कम। इस तरह से असंख्यात वर्गनाओं का एक स्पर्धक होगा, उसको कहेंगे स्पर्धक। जो पहली स्पर्धक की पहली वर्गना थी उससे दो गुना अविभाग प्रतिच्छेद जिसमें होता है, वहां से दूसरा स्पर्धक, तीन गुना है तीसरा स्पर्धक, चार गुना है चौथा स्पर्धक। ऐसे असंख्यात स्पर्धकों की एक गुणहानि होती है। यानी वो जो हमने देखा था ना, इतने सारे प्रदेश देखे थे, उससे आधे हो जाते हैं तब एक गुणहानि कहेंगे, उसमें असंख्यात स्पर्धक चले जाएंगे उसको गुणहानि कहेंगे। ऐसे एक गुणहानि, दो गुणहानि, तीन गुणहानि, उसको नाना गुणहानि कहेंगे। यानी ये सब जो मिलकर जो है, क्योंकि लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश है, तो उन प्रदेशों को योग की अपेक्षा हम रचना करके दिखाएंगे तो ये एक योग स्थान हो गया। तो ये सब मिलकर एक योग स्थान है। तो यहाँ क्या लिखा है, हाँ उस पर्टिकुलर समय में, क्योंकि दूसरे समय में योग बढ़ गया तो उसमें जो मिनिमम वाले कुछ है वो तो वो अलग है। टोटल जो अविभाग प्रतिच्छेद होगी ना, टोटल वो एक योग स्थान के अविभाग प्रतिच्छेद कहलाएंगे। वो टोटल कैसे, क्योंकि इतनी वर्गणाएं हैं उसमें नंबर ऑफ परमाणु इतने, उसमें योग होते हैं, यानी पहली वर्गणा का टोटल अविभाग प्रतिच्छेद इतने, दूसरी वर्गणा के टोटल इतने, तीसरी वर्गणा के इतने, फिर एक एक स्पर्धक के सबका अलग अलग कैलकुलेशन करके जो टोटल योग होगा वो योग स्थान कहलाएगा। ये उसकी बात है। तो एक योग स्थान से दूसरा योग कितना ज्यादा होता है, थोड़ा अधिक होता है। ये जघन्य स्पर्धक देखा ना, यानी वो पहले वर्गना, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहला स्पर्धक जो है टोटल, तो टोटल पहले वर्ग की पहले स्पर्धक की जितने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं उसमें वृद्धि हो जाए, वो भी असंख्य, उसको भी सूचंगुल का असंख्यात विभाग से गुणा करके, तो उतना असंख्यात गुणा कैसे होगा, उसमें ऐड करना दूसरे में विशेष अधिक। अभी हमने क्या देखा था निकालो, अभी पढ़ा क्या हमने, पेज नंबर धवला का पेज नंबर 57 शंकाकार ने पूछा था, हम यही रुकेंगे अभी एक वाक्य इतना पढ़कर, फिर कल फिर कर्मकांड ले आना। यहाँ द्विन्द्रिय पर्याप्त के सबसे जघन्य योग स्थान से लेकर, ये योग स्थान यानी पूरा जो वर्ग वर्गना स्पर्धक गुणहानि सब मिलकर वो एक योग स्थान हुआ। अवस्थित प्रक्षेप उत्तर क्रम से, अवस्थित प्रक्षेप यानी फिक्स्ड एडिशन, एडिशन तो दूसरा होगा, उससे उतना ही ऐड किया और तीसरे होगा, उसको उतना ही ऐड करो तो चौथा होगा। इस तरह से उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान तक प्राप्त हुआ जितना भी योग है ना। और उसमें भी एक योग स्थान से दूसरा योग स्थान जो होता है उसमें वो जघन्य स्पर्धक को सूचंगुल के असंख्यात विभाग गुणा करो उतना अधिक हो जाता है। वो आएगी आगे कहीं, आप पढ़ लेना या पढ़ के आना कल, आपको प्रश्न भी अच्छे निकलेंगे। हाँ अश्विन भाई नहीं, ये जो विषय थोड़ा कठिन है इसलिए हम जाएंगे, स्लोली जाएंगे, क्योंकि फास्ट जाने से और जो तो क्या पढ़ रहे हैं क्या कुछ नहीं समझ में आए, ये थोड़ा समझते समझते जाएंगे। आज तो वो काल यव मध्य थोड़ा तो समझा, उसको यव मध्य कहा, और जीव यव मध्य में वो फिर कल समझाएंगे। हाँ जीव यव मध्य समझाएंगे, वो कम होते हैं, जीवों की संख्या कम होती है दोनों ओर, वो देखेंगे। हाँ, इसमें थोड़ा थोड़ा कम है, उसको जीव गुणहानि वगैरह कहेंगे, वो तो स्लोली एंड ग्रेजुअली चलेंगे हम। हाँ हाँ, वहाँ पर 60 पॉइंट पर, और यहाँ हमने 225 में चालू करेंगे, 225 पे चालू करने वाले। जावाणी की ज्ञान ते सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देतहु।